आज के इस 2 फरवरी के सत्संग कार्यक्रम में रापर में राधा कृष्ण मंदिर में आप सबका स्वागत है। सब लोग मेरे बाद में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सब लोगों को हाथ जोड़ना है, आंख बंद करना है और सबको बोलना है, इधर उधर देखना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो आपको थोड़ा सा इतिहास बताना जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए। 2001 साल में 26 जनवरी को भूकंप हुआ था, रात को सवेरे 4 बजे, तब लोग सो रहे थे तो नींद में ही बहुत सारे लोग चले गए। कुछ लोग स्कूल जा रहे थे तो उनके ऊपर स्कूल गिर गया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 2 दिन बाद में मुंबई में एक बड़ा अस्पताल है, उसका नाम है भक्ति वेदांत अस्पताल। वो थोड़ा सा मुंबई के थोड़ा सा बाहर है, तो वहाँ से एक पूरी टीम यहाँ पर आ गई और डॉक्टरों की टीम थी उसके अंदर, उसके अंदर प्रसाद बांटने वाली टीम थी और उसके अंदर कीर्तन करने वाली भी टीम थी, भगवान का नाम लेने वाली। तो करीब करीब 35 दिन, मतलब फरवरी का पूरा महीना, मार्च का आधा महीना, सावला हॉस्पिटल है ना यहाँ पर, लालजी पालजी सावला हॉस्पिटल, शुश्रूषा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में दिन रात लोगों का फ्रैक्चर हुआ, जख्म हुआ, उसका इलाज किया गया। कुछ लोगों को भर्ती किया, कुछ लोगों को भेज दिया। दिन रात रोज खिचड़ी प्रसाद लोगों को बांटा गया। माता जी बैठ जाओ, आप जरा बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब मत करो। तो बहुत प्रसाद बांटा हजारों लोगों को। और साथ साथ में भगवान का नाम का कीर्तन और प्रवचन और दुखी लोगों को सांत्वना देने का काम किया गया। जब सावला हॉस्पिटल ने का सेवा हमारा पूरा हो गया तो उस समय हमारे नंदगोपाल प्रभु जी मुंबई से आए और यहाँ पर एक साल तक सब लोगों को भगवान का नाम कीर्तन प्रवचन प्रसाद दुखी लोगों को सांत्वना, क्योंकि बहुत लोग दुखी थे। ऐसे दुखी लोग हमको मिले कि वो कह रहे थे कि प्रभु जी हमको भी एक इंजेक्शन मार दो, हमको भी मर जाना है, क्योंकि परिवार में कोई बचा ही नहीं, मैं अकेला बचा हूँ, ना बीवी बची ना बच्चे ना माँ बाप, सब खत्म, मैं अकेला हूँ। कौन से परिवार में केवल एक लड़की बची थी, बाकी सब खत्म। कोई परिवार में एक छोटी सी बालिका बची है, बाकी सब खत्म। ऐसे बहुत दुखी समय था, तो जिंदा थे भी उनको भी मरने की इच्छा थी। ऐसा कठिन समय पे जो बचे हुए लोग हैं, जिनको कुछ जख्म वगैरह नहीं हुआ था, उनको उनका दिल संवारना बहुत ज़रूरी था। तो हमारे नंदगोपाल प्रभु जी ने वहाँ रहकर बहुत लोगों को हौसला बढ़ाया, उनको उत्साह दिया। और एक साल के बाद में फिर एक बिल्डिंग यहाँ पर बनाई, 12 फ्लैट बनाए, और जो भूकंप पीड़ित लोग थे उनको जगह दिया रहने का। तो ये सब हमारे जो परम गुरुदेव हैं, जो हरे कृष्णा संस्था के आचार्य हैं, संस्थापक, उन्होंने हरे कृष्णा संस्था बनाई और विदेश में जाकर उसको लोगों को धर्म को प्रचार किया, लोगों को भगवान नाम दिया। उनका नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद। आमतौर पे उनको श्रील प्रभुपाद के रूप में जानते हैं। उनकी कृपा से उनके शिष्य लोग यहाँ पर आए और उन्होंने लगातार 3 काम साथ में किए, एक मेडिकल सेवा, एक प्रसादम भोजन सेवा और एक हरिनाम सेवा। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कीर्तन का मंडली निकाला था बहुत समय, तो कीर्तन सुनने से बहुत लोगों का पीड़ा कम हो गया, क्योंकि कीर्तन ऐसी चीज़ है कि कीर्तन करने से कितना भी दुखी आदमी होता है उसका दुख दूर हो जाता है। समझो कोई पेड़ है, ऐसा बड़ा पेड़, उसमें 1000 पक्षी बैठे हैं, समझो हमने जोर से ताली बजाया तो क्या होता है, सब पंछी उड़ जाते हैं ना। वैसे हमारे शरीर रूपी पेड़ पर बहुत दुखों के पंछी बैठे हैं, जैसे हरिनाम कीर्तन होता है वो सब पंछी उड़ जाते हैं, सब दुख चिंता कष्ट जो है पीड़ा यातना सब दूर हो जाता है। ऐसे कहा गया है कि कीर्तन जहाँ चलता है, जैसे अभी आपने कीर्तन किया, आप लोग, मैंने कहा आग बंद करके कीर्तन करो, किसी को दुख हुआ क्या उस समय, क्या दुख की याद आई क्या, घर में कुछ तकलीफ है, कुछ कष्ट है, उसका याद आया क्या? जब तक आप कीर्तन कर रहे हो कुछ याद नहीं आता आपको, मतलब कीर्तन जो है वो आपको दुख के स्थिति से ऐसे ऊपर उठाता है। हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कीर्तन जब होता है तो शरीर मन बुद्धि का पार करके हमको आत्मा के स्तर पर वो छोड़ देता है, और आत्मा के स्तर पर केवल आनंद है, इसलिए कीर्तन करते ही हमें आनंद का अनुभव होता है। प्रभुपाद जी ने एक भाषण दिया था बहुत सुंदर कीर्तन के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे ही हम हरे कृष्णा या राम या विष्णु या कृष्ण का नाम लेते हैं, उस समय शरीर मन बुद्धि का स्तर पार करके हम आत्मा के स्तर पर पहुंचते हैं, और आत्मा सच्चिदानंद है, वहाँ कोई दुख नहीं है। तो आत्मा के स्तर पर जब ये नाम उच्चारण होता है, पहुंचते हैं, तुरंत आनंद का अनुभव होता है। कुछ समय के लिए क्यों ना हो, दुख से हम मुक्त अवस्था को अनुभव करते हैं। तो ये कीर्तन की विधि इतनी महत्वपूर्ण है कि केवल कलयुग में नहीं, सत्ययुग में, द्वापर युग में और त्रेता युग में, सब युग में नाम लेने वाले को भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। सत्ययुग में ध्रुव जी ने और प्रहलाद जी ने भगवान का नाम का आश्रय लिया, हाँ, त्रेता में हनुमान जी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, द्वापर ने कितने लोगों ने, हाँ, पांडवों ने, कुंती ने, सब लोगों ने भगवान का नाम का आश्रय लिया। और कलयुग में तो बाकी सारा सब छोड़ना ही पड़ता है, कुछ कर ही नहीं सकते, ध्यान तपस्या वैराग्य सन्यास ये कोई कर नहीं सकता ना, यज्ञ भी नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी नहीं मिलती है अच्छी, घी भी अशुद्ध मिलता है, हवा भी अशुद्ध है, पानी भी अशुद्ध है। तो कलयुग में कुछ भी नहीं बचा, अभी केवल भगवान का नाम और उनका कीर्तन बचा है। और क्या बोलते हैं कि कलयुग में जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन का आश्रय लेते हैं उनको बुद्धिमान माना गया है। वो बुद्धिमान नहीं जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पीएचडी हो गया है, एमबीए हो गया है, जो कंप्यूटर चलाने को आता है, उनको बुद्धिमान नहीं माना है। बुद्धिमान उनको माना है जो समझते हैं कि कलयुग को तारने वाला केवल भगवान का नाम है, और वो समझ बूझ कर जो भगवान के नाम के कीर्तन का आश्रय ग्रहण करता है वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। सुमेधसा कहा गया उसको, सुमेधसा, केवल मेधसा मतलब बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब बहुत बुद्धिमान। और कोई भी अच्छा काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और सबसे अच्छा काम भगवान के नाम का कीर्तन है। अरे लोग बोलते हैं इतना कम समय किधर है भगवान के नाम लेने का, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जिस काम में हम लोग बिजी रहते हैं वो काम हमको मृत्यु से बचा नहीं सकता। आप सोच रहे हैं अरे बच्चा छोटा है अभी, हाँ नई नई शादी है, पति को नया नया जॉब लगा है, अभी कर्जा है घर का और गाड़ी का, अभी तो टाइम किधर है, ऐसा बोलेगा। तो कर्जा पूरा हो जाएगा, घर तुम्हारे नाम पे हो जाएगा, गाड़ी भी तुम्हारे नाम पे हो जाएगी, शादी भी पुरानी हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जो भी हासिल करोगे वो मृत्यु के समय यही छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस काम में हम लोग बिजी है वो काम हमको मृत्यु से बचा नहीं सकता। और मृत्यु अमीर आदमियों की भी आती है और गरीब को भी आती है, सबको मृत्यु आती है, जवानी में आती है, बचपन में आती है, बुढ़ापे में आती है, कब आएगा गारंटी नहीं है। तो हमारा समस्या ये नहीं है कि हमारे पास लोन है और नई शादी है, बच्चे छोटे हैं, बहुत सारा काम है, ये हमारा कष्ट नहीं है। हमारा कष्ट ये है कि ये सब होने पर भी हम लोग की मृत्यु होने वाली है, एक दिन हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। और सोचते हैं कि बूढ़ा होने के बाद में होगी, लेकिन जब भूकंप हुआ था तो बच्चे मरे थे कि नहीं मरे थे, हाँ स्कूल जा रहे थे बेचारे, सब लोग एक साथ मर गए, क्या उनके मरने की उम्र थी क्या? नहीं, ये दुनिया के अंदर किसी भी उम्र में मृत्यु होती है। हम डॉक्टर हैं, हमारा हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल में हर आयु का व्यक्ति मरता है, हमने देखा है। इतना सा बच्चा जन्म लेता है मर जाता है, कुछ बच्चे गर्भ के अंदर ही मर जाते हैं, और कुछ लोग 80-85 साल की उम्र में आते हैं और कैंसर से मर जाते हैं। कुछ जवान औरत बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, बच्चा बचता है वो मर जाती है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई गलत कुछ खाया तो पॉइजन होकर मर जाता है। कितने कारण है उसके, और कोई भी उम्र ऐसी नहीं है, नहीं 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 मैं तो 25 साल का हूँ, मेरे को तो बहुत टाइम है अभी, ऐसा सोच के बाहर निकलेगा, मोटरसाइकिल पर बैठेगा, एक्सीडेंट होगा, मर जाएगा। ऐसा हमने कितनी बार देखा है, स्लो स्पीड में जा रहा है वो, 15 के स्पीड में जा रहा है, गली में घूम रहा है, फिसलता है, गिरता है सर पे, वहीं कभी खत्म हो जाता है। उम्र कितनी? 24 साल। तो ये सब लोगों को याद रखना चाहिए। आप बोले क्या प्रभु जी आप इतना दूर से आए और मौत की बात कर रहे हैं, कुछ अच्छी बात करो ना, ये अशुभ बात क्यों कर रहे हो? ये अशुभ बात नहीं है, ये सत्य है। सत्य कड़वा लगे मीठा लगे, सत्य सत्य ही होता है, और सत्य से किसी को डरना नहीं चाहिए। जो सत्य से भागता है ना फिर भी सत्य छोड़ता नहीं उसको। समझो आपको हमको कैंसर हो गया है, मुझे कैंसर हो गया, और मैं मानता नहीं, नहीं मुझे कैंसर नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कैंसर जो हुआ है वो छोड़ेगा नहीं मुझको। तो सत्य से आंख बंद करेंगे तो सत्य छुपता नहीं है, सत्य तो आपको पकड़ के रखेगा। सत्य ऐसी वस्तु है जो हमेशा आपके साथ रहती है, और आप मानो या ना मानो आपके साथ ही रहेगी, वो उसका परिणाम भी दिखाएगी। काल के प्रभाव से सत्य आपको छोड़ेगा नहीं कभी। इसलिए ये जीवन में सबसे बड़ी समस्या है कि हमको एक दिन मरना है, और वो समस्या के लिए जो सोचता है उसको बुद्धिमान माना गया है। जो डॉक्टर बन के बहुत डिग्री प्राप्त किया है, किसी का डायग्नोस करता है, बीमारी ठीक करता है, वो बुद्धिमान नहीं माना गया है। वो तो आज बीमार ठीक करेगा तो कल दोबारा बीमार पड़ जाएगा, आज बुखार ठीक हो गया तो कल तो और कुछ बीमारी हो जाएगा, कल 10 लगेंगे, फिर 2 दिन ठीक ठीक रहेगा, सर्दी आ जाएगी तो और बुखार आ जाएगा उसको, कभी टाइफाइड हुआ तो कभी डेंगू हो जाएगा। कोई गारंटी है क्या? आज डिस्चार्ज हो गए सावला हॉस्पिटल से तो अभी इसके आगे जिंदगी भर कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? बार बार जाना पड़ता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन लास्ट में मृत्यु आती है। और लोग सबसे डरते किसको है जिंदगी में बताओ आप? सबसे डर किसका है लोगों को? मृत्यु का। उसका लोग नाम भी ले जाना चाहते नहीं, बात भी नहीं करना चाहते उसके बारे में, बोलते बहुत डेंजरस चीज है वो, उसके बारे में बात भी नहीं करना है अपने को, और अशुभ भी है। आप करो बात या मत करो, शुभ मानो या अशुभ मानो, वो एक दिन आएगा, तब क्या करेंगे? बाकी सारे परीक्षा का तैयारी की हम लोग ने, बहुत पेपर पढ़े, बहुत किताब पढ़ी, रटा उसको, एग्जाम दिया, पास हो गए, लेकिन ये एग्जाम जो है इसका तैयारी कुछ करता ही नहीं, कोई कॉलेज ही नहीं है इसका, कोई क्लास कोई है, कोचिंग क्लासेस है क्या इसका, एग्जाम देने का कोई कोचिंग क्लास है? कोई कोचिंग क्लास नहीं है। सब लोग बोलते हैं अरे खाओ पियो ऐश करो, क्या है इसमें, कौन कल किसने देखा है, सब लोग आनंद करो, ऐसे सब लोग बोलते हैं। सच्चाई से आपको ओझल कर देते हैं, सच्चाई जो है ना, सत्य जो है उससे आपको भुला देते हैं, बोले सत्य कुछ नहीं है उसमें, क्यों चिंता करते हो, आराम करो, मजा करो, खाओ पियो ऐश करो, ये सब लोगों का गलत धारणा है। सबसे दयालु व्यक्ति वो है जो हमको मृत्यु की याद दिलाता है। हम क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। हम क्या बोलते हैं? एक साल मृत्यु के पास आ गया, हम लोग केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम कहते हैं एक साल कम हो गया, एक साल और मृत्यु के पास गया। तो जब भी किसी का बर्थडे होता है तो हमारे व्हाट्सएप में बहुत हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 50 लोग आते हैं, मैं अकेला लिखता हूँ एक साल मौत के पास आ रहे हो, सावधान हो जाओ। हाँ, केक काट के खा सकते हो, आनंद करो, लेकिन रात को सोने के समय सोचो एक साल गया, एक साल और पास में गया, वो सत्य के पास में गया। सत्य क्या है? मरने वाले हो। लास्ट ईयर 4 ही बाल सफेद थे, इस बार 15 सफेद हो गए। लास्ट ईयर वो शेंडी में कुछ सफेद बाल नहीं थे, इस बार शेंडी में भी सफेद बाल हो गए, है ना? तो कुछ लोग रंग लगाते हैं उसको सच्चाई छुपाने के लिए, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई बनी रहती है। आप कुछ भी करो, रंग लगा दो, मेकअप करो, सच्चाई कभी छुपेगी नहीं। और जिस समय घंटी बजेगी उस समय तैयार रहना है भाइयों और बहनों, माताओं और पिताओं, चाचाओं और चाचियों, उस समय बोलेंगे ना टाइम प्लीज। बच्चा कैसे करता है खेल में? टाइम प्लीज। उसमें टाइम प्लीज नहीं होता है, एक क्षण का भी टाइम नहीं मिलता है, जो है वैसा ही छोड़ना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, बच्चे का भी दूध गैस पे रखा है, वो तो बोलेगा गैस बंद करके आती हूँ, ऐसा नहीं होता है उधर। वो तुकाराम महाराज जब ही, उनको वैकुंठ का विमान आया लेके जाने के लिए, संत तुकाराम महाराष्ट्र के, तो उनकी पत्नी थी आवड़ा बाई, तो तुकाराम महाराज बोले आवड़ा है चलो, वैकुंठ का विमान आ रहा है, चलो चलो चलो। तो क्या बोलती है? अरे जरा भैंस को धो के आती हूँ मैं, जरा भैंस धोने का बाकी, आज का ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है, वो भैंस को धो के आ जाती हूँ। फिर बोलती है भैंस को धो के अभी दूध निकाल के आती हूँ। उतने में तुकाराम चले गए, उनको लगा रोज बोलते ऐसे, क्या है उसमें, नई बात क्या है? तो क्या बोलते थे? ये आम तो येड़ा, मतलब मेरा वो पागल पति जो है ना, वो हमेशा ऐसा ही कुछ करते रहता है, ऐसा सोचा उसने। फिर जब वो दूध निकाल के भाग भाग के आई, ए जनता जमा हो गई उधर, और क्या देखते हैं? तुकाराम महाराज वैकुंठ पे, गरुड़ पे बैठ के वैकुंठ जा रहे हैं, आकाश में देख रहे हैं। अरे गया, छूट गया विमान, अभी उसका नंबर नहीं लगा, क्योंकि वो क्या बोल रही थी, इसको भैंस धोने का काम बाकी था। मतलब जब बुलावा आता है ना, तो एक भी क्षण एक्स्ट्रा नहीं मिलता है उधर, एक भी क्षण एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलेगा, और गरीब से गरीब फटीचार भिखारी को भी नहीं मिलेगा। जब बुलावा आएगा, घंटी बजेगी, तो वहीं के वहीं छोड़ के चल जाना है। तो इसलिए अभी जब तक समय है तब तक भगवान के नाम में मन लगाना चाहिए। अभी पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क मिलेंगे। आज मजा करेंगे और एग्जाम के पहले रात को जागेंगे, पूरा किताब पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, जागेंगे जरूर, आप 3-4 चाय पियेंगे, कड़क चाय एकदम अदरक डाल के, और रात भर जगेंगे चाय पीते पीते, पूरा किताब 10 बार आगे पीछे करेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्या पढ़ रहे हैं और क्या को याद भी रहेगा नहीं, नींद तो हराम हो गई, और कल सुबह पेपर में जाएंगे तो उल्टी हो सकती है आपको, पित्त बढ़ के। तो आप सोचेंगे मैं कि मैं लास्ट में पढ़ाई करूँगा, वो दिन टीवी देखूंगा नहीं, वो दिन घूमने को नहीं जाऊंगा, वो दिन किताब पढ़ूंगा, और एग्जाम में मैं फर्स्ट क्लास आऊंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर। सबको पता है जो साल भर पढ़ाई करता है उसी को एंड में अच्छे मार्क मिलते हैं, जो लास्ट दिन पे पढ़ाई रखता है वो फेल हो जाता है। वैसे ही जो जीवन भर भगवान की याद करता है वही मृत्यु के समय उनकी याद कर सकता है। आप बोलेंगे उस समय करेंगे ना, क्या है उसमें, इतना जल्दी क्या है, मुझको समझ में आ गया है, एंड में बोलना है, बस एंड में बोलेंगे, इसमें क्या है। लेकिन प्रकृति का नियम क्या है, प्रकृति का नियम यह है, जीवन भर जो रटते हैं, जो याद करते हैं, इसका नाम जपते हैं, हाँ, पैसा 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 पैसा, तो एंड में भी पैसा ही याद आता है। जीवन भर धंधा 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 करेंगे, धंधा ही याद आएगा। परिवार में मन लगेगा तो परिवार ही याद आएगा, और जीवन भर में अगर भगवान पे दिल लगाएंगे तो ही उनको उनकी याद आने की संभावना है। संभावना नहीं है अदरवाइज, अगर आप नहीं करते हो आज कोशिश, लास्ट में रखते हो, नहीं होता है। मेरे पिताजी मेरे घर पे थे, हाँ, मेरे घर पे 6 महीना थे, वो बीमार होके आए थे। तब बहुत साल पहले मैं जब मैं भक्ति में आया था तो मुझे विरोध करते थे वो, अरे ये क्या पढ़ाई करने का समय है, भजन करने का समय नहीं है, एक बार पढ़ाई पूरा करो, फिर पैसा कमाओ, 100 रुपया कमाओ, 90 रुपया दान दे दो, लेकिन पहले 100 कमाओ, ऐसे बोलते थे वो। बहुत विरोध किया हमको उसने, हमने फिर भी हमारा काम जारी रखा, संतों के संग में थे तो उन्होंने बहुत उत्साह दिया। तो पिताजी का विरोध, भाई लोगों का विरोध, फिर भी रखा। वो कहते थे ये सब समय अभी नहीं है, ये सब अपना पूरा परिवार कर्तव्य पूरा निभाने के बाद में करने का होता है, पहले अपना ड्यूटी पूरा करो। तो ये बात चलती रही हमारी, फिर उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, मतलब मैं लास्ट लड़का था और मैं भी डॉक्टर बन गया, मेरा भी अपना अपना काम शुरू हो गया, मेरी शादी भी हो गई, और क्या बचा अभी, मेरी हो गई, बाकी सबकी ऑलरेडी हो गई ना, उसका क्या, मेरी हो गई मतलब सब बड़े को भी सबकी हो गई, सबके बच्चे हो गए, सब अपने अपने धंधे पे लग गए, इसका मतलब क्या हुआ, पिताजी अभी कर्तव्य करके फ्री हो गए, तो उनके कहने के मुताबिक क्या होना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए, अभी उन्होंने कहा था ना, तो जो वो कह रहे हैं उनको खुद को पालन करना चाहिए कि नहीं। तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि जब मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा तो मैं पूरा समय भजन करूंगा भगवान का, लेकिन आज मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है और मैं फ्री हो गया हूं, लेकिन मेरे से भजन होता नहीं है। मतलब क्यों नहीं होता है, मतलब जॉइंट में पैंट पैर में दुखता है, छाती में दुखता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाँ, हड्डी में तकलीफ है, पीठ में दर्द है। तो कहते हैं टाइम तो बहुत है लेकिन भगवान के भजन में मन नहीं लगता। फिर क्या हुआ, फिर टीबी हो गया, दोनों फेफड़ों में पूरा फैल गया, इतना फैल गया कि दवा भी काम नहीं कर रही थी। उस समय मेरे घर पे रहने को आए और 6 महीना मैंने उनका इलाज किया। तब मुझे वो हमारे घर पे, तभी जब थे तभी सत्संग होता था हमारे घर पे, मीरा रोड में जब पहले पहले आए थे, हाँ, नए थे तो मेरे घर में बहुत डॉक्टर लोग आते थे भजन करने के लिए, सुबह सुबह मंगला आरती, भगवान का कीर्तन, तुलसी पूजा, भागवत प्रवचन, फिर प्रसाद, फिर भगवान को प्रणाम करना, ये 3-4 घंटे लोग आते थे तो वो सुनते थे सब बैठ के, तो सब लोग को हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करते थे और मुझे बोले बेटा तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे उम्र में अगर मैं करता तो आज मुझे ये मुश्किल नहीं होती, मैं आज आसानी से भजन कर पाता, क्योंकि जवानी में जो करता है वही बुढ़ापे में कर सकता है, बुढ़ापे में नया आइटम नहीं सीख सकते हम लोग, कोई नया कोई तरीका नहीं कर सकते, जिसकी आदत बनी हुई है वही आदमी कर सकता है। जब करते हुए अगर सोने की आदत बनी हुई है तो बुढ़ापे में भी जब करते हुए सोता रहेगा, जब करते हुए बात करने की आदत हो गई है तो जब करते हुए फोन पे आगे से पीछे से बात करते रहेगा। जो भी आदत हमने जवानी में कच्ची उम्र में बनाई हुई है वही बुढ़ापे तक चलेगी, ये हमने अभी बहुत अनुभव किया इस बात का। इसलिए जब कच्ची उम्र है, उत्साह है, हेल्थ अच्छी है, दिमाग अच्छा है, सब कुछ सेट है, कोई तकलीफ नहीं है, खाने पीने को व्यवस्था भगवान ने की है, तब भगवान के भजन करने का अभ्यास करना चाहिए। वेट करेंगे बोलो रुको रुको अभी टाइम है, बहुत मेहनत करना है, अभी बहुत काम बाकी है, तो फिर बुढ़ापे में जो जीवन भर किया है वही याद आएगा, जो जीवन भर किया है वही याद आएगा, नया कुछ नहीं सीखेंगे ना नया कुछ कर पाएंगे। तो वो मेरे पिताजी जो इतने सिंह की तरह थे, हाँ सब डरते थे उनके, बहुत पावरफुल थे वो, और उनका विरोध मतलब बहुत भयंकर, वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोल रहा है बेटा तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो करते रहो, तुम्हारी उम्र में अभी आदत बनाया तो मेरी उम्र में वो कर पाओगे, मेरा तो मन ही लगता नहीं। मतलब सत्य को स्वीकार किया उन्होंने, पहले स्वीकार नहीं किया था बाद में स्वीकार किया, बोले समय ही समय है फिर भी कुछ नहीं कर पाता हूं, मन लगता ही नहीं उसके अंदर। अरे पहले मन लगाने का आदत बना लिया तो ही बाद में लगेगा जो पहले आदत बना के रखा है। अगर जवानी से हम लोग सुबह जल्दी उठने का आदत है तो बुढ़ापे में भी आसानी से उठेंगे। मैं जानता हूं इतने बुढ़े लोगों को जो 10 बजे तक सुबह उठते नहीं हैं, क्योंकि जवानी में भी 10 बजे तक सोते थे, तो बुढ़ापे में भी वही चलेगा जो पहले का हिसाब है। इसलिए ये समय जो है हमारे जीवन का बहुत कीमती है, ये समय दोबारा नहीं आता है। दीदी आपको अगर दिल करेगा कि मैं 16 साल की बन जाऊं, बनेंगे क्या आप? मुझे लगेगा मैं भी 16 साल का बन जाऊं, बनेगा क्या? नहीं, गया वो समय, जब था तब था, अभी वापस नहीं आएगा वो। अब मुझे दौड़ के पहाड़ चढ़ने की इच्छा है, नहीं चढ़ सकता, वो समय गया अभी। अब मुझे समझ में आया है, अब मुझे 50 साल भजन करने की इच्छा है, लेकिन 50 साल खाते में है क्या तुम्हारे? जब थे तब भजन करने का इच्छा नहीं था, अभी खाते में साल ज्यादा बचे नहीं है तो 50 साल करने की इच्छा पैदा हुई, कैसे पूरा होगा वो? इसलिए मानवीय जीवन में गया हुआ समय लौट के नहीं आता कभी, कुछ भी करो आप, कितना भी धन लगाओ, गया हुआ समय वापस लौट के नहीं आता। सब सोचते हैं अरे कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, हाँ बीते हुए दिन मेरे बचपन के दिन लौटा दो, कितने अच्छे दिन थे वो, कोई टेंशन नहीं था, लौट के आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसलिए सब जवानों को, सब मध्यम आयु के, सब वृद्धावस्था के, सबको मेरी विनती है कि ये मनुष्य जीवन का समय बहुत कीमती है, इतना भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए उसको। कर्तव्य करने के बाद में जो बचता है उसको एक एक क्षण भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, कर्तव्य करते करते शाम को थक जाते हैं, बोलते टीवी लगा दो यार बहुत थक गए, अभी कुछ पिक्चर देखेंगे, कुछ क्या करेंगे, और अब टाइम मिलेगा तो कहीं हिल स्टेशन घूमने को जाएंगे, वहाँ पर दारू पियेंगे, नाच करेंगे, डिस्को में जाकर डांस करेंगे, बहुत स्ट्रेस हो गया है अभी, दिमाग बहुत टेंशन में है, उसको फ्री करना चाहिए। मतलब इतना बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत समय बचता है वो भी बाकी बेकार समय में व्यर्थ कर देते हैं। और कलयुग में वैसे भी कैसा है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत घंटे काम करना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बहुत घंटे काम करना पड़ता है। पहले जमाने में बहुत कम काम करना पड़ता था पेट भरने के लिए, अभी पेट भरने के लिए बहुत टाइम काम करना पड़ता है। इसलिए एक तो आयु कम हो रही है, कोई ध्यान इधर मत करना, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक तो आयु कम होती जा रही है, अभी 100 साल पूरा किया तो पेपर में फोटो आता है कि ये व्यक्ति ने 100 साल पूरा किया, उसको दिखता नहीं, उसको सुनना नहीं पड़ता है, उसको पता नहीं हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा है उसको, लेकिन फोटो पेपर में आता है। मतलब बहुत दुर्लभ हो गया है 100 साल पूरा होना। लोग 70-80 में चले जाते हैं, अभी तो 50-25 में भी हार्ट अटैक आता है। हमारे हॉस्पिटल में आओ, 25 साल में हार्ट अटैक आता है, बोलो, क्योंकि आदतें इतनी खराब हो गई है। शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, क्या क्या करते हैं लोग। उसका फल क्या है? जवानी में हार्ट अटैक, जवानी में ब्लड प्रेशर, जवानी में क्या क्या तकलीफ। तो कैसा जिएगा आदमी, 50-60 हो गए तो गया काम से। तो इतनी कम आयु में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बचपन से करना पड़ेगा ना। बचपन से अगर करेगा तो इतनी कम आयु में कुछ होएगा, उसका कल्याण होगा, तो कैसे कल्याण होगा। हमारा कैसा है, बचपन में खेल खेल में टाइम बीतता है, जवानी हो गया तो फिर लड़का को लड़की अच्छी लगती है, लड़की को लड़का अच्छा लगता है, उसके दिल में वही गुल खेलते रहते हैं, फिर शादी, फिर कुछ दिन वो जवानी का जोश, फिर बच्चे, फिर उनकी जिम्मेदारी, देखते देखते कब बाल सफ़ेद हो गए समझता नहीं है, 50 हो गए अभी, अरे क्या करना है अभी, उसके आगे समय है ही नहीं, समय है ही नहीं। और अगर मौत के समय भगवान की याद नहीं आई, दोबारा आना पड़ेगा, फिर कुत्ता बनेंगे कि बिल्ली बनेंगे कि इंसान बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। सोचो इसके बारे में आप सब लोग सोचो। हम सोचते हैं कि अरे क्या हुआ, इसमें भगवान का नाम लिया है कुछ बार, थोड़ी बार लिया है, अगली बार मनुष्य बन के आएंगे, फिर आगे का पूरा करेंगे, क्या उसमें जल्दी क्या है, टाइम ही टाइम है अपने पास। लेकिन आज का समय इतना बुरा है, देखो आप, इतना हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं मिलता है, इतना केमिकल मारते हैं उसके अंदर, क्या एक भी सब्जी अच्छी नहीं मिलती है। हाँ, ऐसा एक बाजू में करो, उसको करो ना बाजू में, हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आज का समय इतना खराब है, 10 साल के बाद में कैसा रहेगा, इससे अच्छा होगा कि खराब हो जाएगा, क्या लगता है आपको? आप लोग बड़े बुजुर्ग हो, बताओ, आपके बचपन में समय अच्छा था क्या आज से कि नहीं? आज कैसा लगता है, समय बिगड़ गया कि अच्छा है? बिगड़ गया है। हमारे बचपन में अच्छा था बहुत। एक बीड़ी किसने सिगरेट स्कूल में पी थी तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया। आज सब बच्चे बीड़ी पीते हैं, किसी को निकालते नहीं है, क्योंकि आज बीड़ी पी के आगे चले गए, वो शराब भी पीते हैं और नशा भी करते हैं, और स्कूल में भी लड़कियां सेक्स करती है और गर्भवती हो जाती है, तो बोलना कि सिगरेट ना बहुत मामूली चीज़ है, अभी उस पर ध्यान रखो, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, समय बिगड़ गया ना। उस समय इतना अच्छा था, अभी कुछ नहीं, ईमानदारी थी, लोग बैग रखो कोई चोरी नहीं करता था, अभी बैग हाथ में रखेगा तो छीन के लेके जाते हैं। लड़कियों को 7 बजे के बाद घर बाहर भेजेंगे, टेंशन आता है, अरे किधर गई किधर गई, 7 बज के अंधेरा हो गया, किधर वापस नहीं आई, टेंशन आता है माता पिताओं को। पहले ऐसा ऐसा नहीं था। कहने का मतलब यह है कि आज जो समय है वो पहले से खराब है, और आज के बाद जो आएगा वो आज से खराब हो जाएगा, और अगर हम दूसरा जन्म लेंगे मरने के बाद में तो समय अच्छा होगा कि बुरा होगा? अरे बहुत बुरा होगा। और वो बुरे समय में आपको फिर कोशिश करनी है भगवान का नाम लेने की। आप सोचो इसके बारे में, पानी नहीं आएगा, आकाश में वर्षा नहीं होगी, ये भागवत में लिखा है, मैंने कह रहा हूं, भागवत में व्यास देव ने लिख के रखा है, सुखदेव ने कहा है, आकाश से वर्षा नहीं होगी, पृथ्वी से फसल नहीं निकलेगी, पेड़ पे फल फूल नहीं आएंगे। सोचो आप, पीने को पानी नहीं मिलेगा, हवा अच्छी नहीं रहेगी, हवा में बहुत पॉइजन रहेगा, कहाँ जिएंगे हम, कैसे जिएंगे? आज भी देख रहे हैं ना हम लोग, जब फसल होती है तब वर्षा नहीं होती, और फसल तैयार है अभी तो फिर ओले गिरते हैं उसके ऊपर, तैयार फसल जल जाती है, खराब हो जाती है, मतलब लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। आज के तारीख में भी बहुत अकाल पड़ रहा है महाराष्ट्र में, आपके यहाँ पर भी पड़ा होगा शायद। कहने का तात्पर्य क्या है, और समय वेस्ट मत करो, यहाँ पर समय बहुत कीमती है, वो एक बार निकल जाएगा दोबारा नहीं आएगा, वापस आने का मत सोचो, इधर वापस आने का प्लानिंग मत करो कि बचा कुछ अगले जन्म में पूरा करेंगे, मत सोचो ऐसा, बहुत डेंजर चीज है ये। एक बार मनुष्य का जन्म मिला है, बहुत दुर्लभ है ये, और वो दुर्लभ मनुष्य के जीवन में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना और भी दुर्लभ है, और दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। एक बार मनुष्य जन्म मिल जाएगा आपको, लेकिन मनुष्य जन्म में संत का दर्शन और भगवान का चर्चा बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एक बार मिला तो पकड़ के रखो उसको, छोड़ो मत, दौड़ो उसके पीछे। एक बार वो दौड़ के आपके पास में आया है, उसके बाद आप दौड़ो उसके पीछे। ऐसी वस्तु है ये, बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती और बहुत दुर्लभ, सबको प्राप्त नहीं होती है। जिसके बहुत पुण्य किए हैं पुराने जमाने में, उसको प्राप्त होगी वो, और पुण्य किए हैं, प्राप्त हो गई है, फिर छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे क्या बताऊं आपको मैं, स्वयं भगवान ने, भगवान अपना नाम का कीर्तन आप तक पहुंचाने के लिए भगवान ने एक पूरा अवतार खर्च किया है, मालूम है आपको। श्री कृष्ण भगवान जब कृष्ण भगवान के रूप में आए थे, मथुरा में जन्म लिया उन्होंने, तो उन्होंने तय किया कि मैं एक अवतार अलग से लूंगा, केवल मेरा नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, मेरे नाम का कीर्तन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक पूरा अवतार खर्च करूंगा। उनका नाम क्या है, किसी को पता है कौन थे वो भगवान जो कलयुग में आए नाम का कीर्तन करने के लिए? उनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, जो राधा रानी का भाव लेकर आए, राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए, और राधा रानी जो नाम जपती है वो कीर्तन उन्होंने सबको बांटा। रास लीला करते थे वो अकेले में गोपियों के साथ, वो आनंद उन्होंने महामंत्र के द्वारा, जो हमने गाया अभी, वो महामंत्र के द्वारा सब जनता को बांटा, चाहे गोपी बनने योग्य हो या नहीं हो, सबके लिए वो हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने बांट दिया। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये महामंत्र को कीर्तन उन्होंने सबके बांटने के लिए, सबको बांटने के लिए एक 48 साल का अवतार पूरा लिया उन्होंने। 1486 साल में उन्होंने अवतार लिया पश्चिम बंगाल में, पहले 24 साल वहां प्रचार किया, फिर संन्यास लिया, भ्रमण किया भारत भर का, और लास्ट के 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास किया, और पूरे लोगों को भगवान के नाम के आनंद में डुबो दिया उन्होंने। तो अगर ये काम, भगवान के नाम का कीर्तन करने का काम, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता, जरूरी नहीं होता, तो भगवान क्यों लेते एक अवतार पूरा, बताओ। भगवान का समय भी बहुत कीमती है, अलग समय निकाल कर भगवान ने एक छुपा हुआ अवतार लिया। भगवान हमेशा भगवान बनकर आते हैं, लेकिन इस बार वो भक्त बनकर आए। इसलिए किताबों में क्या लिखा है, हमारे इतिहास किताब में, हिस्ट्रिक बुक में क्या लिखा है, चैतन्य महाप्रभु बंगाली संत थे, भगवान के नाम से उसको वर्णन नहीं आता है, क्योंकि तो भगवान खुद भी छुपाना चाहते थे कि वो भगवान है। भक्त बनकर भक्त को क्या करना चाहिए, इसका स्वयं उन्होंने उदाहरण के रूप में लोगों को दिखाया। इस हरिनाम का वो कीर्तन करते थे, उनकी आंखों से अश्रु बहते थे, उनका कीर्तन देख के लोगों के दिल पिघलते थे, इतना सुंदर कीर्तन करते थे वो। जहां जहां गए केवल कीर्तन किया, अरे पेड़ पौधे भी नाचने लगे। बोलो, जब मथुरा में गए तो पेड़ झुककर प्रणाम करते थे उनको, उनके फल फूल चरणों में अर्पण करते थे, पेड़ भी, बोलो, जो चल नहीं सकते हैं वो भी उनके नाम के कीर्तन के प्रभाव से हार्ट, उनका दिल पिघलता था और प्रणाम करते थे वो, ऐसे कांपते थे पेड़, ऐसे 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 उनके फल भी और पत्ते भी झड़ते थे आनंद में। गाय भैंस बकरी हिरन मोर भगवान का नाम लेते थे, हाथी सिंह बाघ शेर, उन्होंने झारखंड में उनके कीर्तन में भगवान का नाम लिया। जो जानवर भगवान का नाम बोल सकता नहीं ना वो, तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु बनकर, तो जानवर के मुख से भी, पंछियों के मुख से भी भगवान का नाम बुलवाया उन्होंने, इतना पावर था उनके अंदर। और जो इंसान जो भी मिला वो सब उनके, उनको देखते ही भगवान की भक्ति में एकदम मशगूल हो गया, जितने भी इंसान मिले वो सब भगवान के शुद्ध भक्त बने, ये उनका प्रभाव था। तो ये उनका समय है, उन्होंने ऐलान किया था, ध्यान से सुनना सब लोग। 1486 में उन्होंने अवतार लिया। उन्होंने कहा मेरे जन्म के बाद 10,000 साल तक जो भी भगवान का नाम लेगा वो सीधे वैकुंठ पहुंचेगा। वो काल को उन्होंने नाम दिया सुवर्ण युग, कलयुग का सुवर्ण युग, कलयुग के अंदर का सुवर्ण हिस्सा, गोल्डन। जो भी व्यक्ति इस 10,000 साल के काल में भगवान के नाम को ग्रहण करेगा वो उसी जन्म में भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारे तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति होगा और वो बार बार आते रहेगा और 10,000 साल के बाद भी इधर ही आएगा तो घोर कलयुग शुरू होगा, और घोर कलयुग में कोई भजन नहीं कर सकता, तो खाने पीने को नहीं मिलेगा, सब जानवर खा जाएंगे और इंसान को भी खाना शुरू करेंगे। ऐसा समय आएगा, तब तक इंतज़ार मत करना। कैसा होगा समय वो देखने के लिए रुकना नहीं यहाँ पर, वो बहुत भयंकर समय होगा। अभी बढ़िया समय है आपके लिए, महाप्रभु जी का आशीर्वाद है, चैतन्य महाप्रभु का, कि इस 10,000 साल में जो भी मेरा आश्रय लेगा भगवान के नाम का उसको गारंटी है कि मैं भगवान के धाम में ले जाऊँगा, मेरे धाम में ले जाऊँगा। आज कितने साल हो गए, कुछ 530 साल हो गए काली, अभी भी 9,500 साल बाकी है उसके। लेकिन मेरा आपको विनती है 9,500 साल तक यहाँ पर वेट मत करना, क्योंकि समय और ख़राब और ख़राब और ख़राब होने वाला है। इसलिए अभी मनुष्य शरीर में बैठे हो तो इसका लाभ ले लो, क्योंकि अभी अगर हम कुत्ते बिल्ली के शरीर में है तो सत्संग की बातें समझ में नहीं आएगी, वो तो हड्डी कहाँ पर है, पाव ब्रेड किधर है, वो उसके पीछे भागेगा। वो मनुष्य आदमी रहेगा, चलो भूखा भी है फिर भी जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आएगा उसको, क्योंकि वो उतनी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि भगवान ने मनुष्य को दे दी है, वो बुद्धि बहुत ज़रूरी है। जो बुद्धि भगवान के विषय में हमको समझाती है, समझ में आता है भगवान का विषय, वो बुद्धि केवल मनुष्य को दी गई है, उसको कहते हैं सार असार बुद्धि, यानी कि सद असद विवेक बुद्धि कहते हैं उसको। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भगवान का विषय क्या है, भगवान का विषय क्या नहीं है, वो समझने की बुद्धि इस शरीर में है केवल, चाहे बुढ़ा शरीर है या जवान शरीर है, केवल मनुष्य के शरीर में यह बुद्धि दिया गया है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। और कोई भी शरीर मनुष्य को छोड़कर भगवान के विषय में समझ नहीं सकता। कीटक का जन्म हो, बिल्ली का जन्म हो, कुत्ते का हो, जानवर का हो, पंछी का हो, पेड़ का हो, हाँ सर्प का हो, मछली का हो, किसी भी योनि में, वो बुद्धि नहीं दी गई है जिससे आप कृष्ण भगवान को, राम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो कि आपने हमको शरीर मनुष्य का दिया है, हाँ समय मनुष्य का दिया है, और समय व्यर्थ मत गवाओ, बातों में मत बताओ, दुनियादारी की बातें करके क्या किसको मिला है आज तक। जन्म तेरा बातों में बीत गयो, कबहु कृष्ण न कहो, गया निकल गई। अभी आपके 25 साल हो गए, उनके 50 हो गए, और किसी के 75 हो गए, ऐसे ऐसे गए। 2001 में आए थे, 2016 हो गए अभी, हाँ 15 साल पूरे हो गए, पता नहीं चला कब पूरे हो गए। और क्या हासिल किया भगवान की भक्ति में, कुछ नहीं, ऐसे दुनियादारी में बड़े रहे। तो इसलिए हम आपको विनती करते हैं, भगवान ने जो कृपा किया है चैतन्य महाप्रभु के जन्म लोक के लेकर, अवतार लेकर, इसको बंद कर सकते क्या कुछ देर के लिए, हाँ बचे तो क्या, सत्संग रोज नहीं होता है ना, उसका क्या, कटिंग तो कल भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, भगवान राम ने भी यही अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने भी यही अवतार लिया, जितने मत्स्य कुर्म वराह नरसिम्हा सब अवतार ने यहाँ पर जन्म लिया। इतने सैकड़ों करोड़ों संत हैं हमारे भारत में, जन्म कहाँ लिया, अमेरिका में लिया क्या, इंग्लैंड में लिया, इंडिया में लिया, भारतवर्ष में लिया, सोचो आप इसके बारे में। और वहीं पर हमारा द्वारा जन्म हो गया है, उसी देश में, इसमें गंगा बहती है, जमुना बहती है, संत लोगों ने अवतार लिया है, भगवान ने अवतार लिया, लीला किया है, इस भूमि को पावन किया है। हाँ, इतनी ऋषि की जमीन है, ये ऋषि की भूमि है, इसमें हम भी हैं, ये भूलना मत इस बात को। हम भी उसी भूमि में पले हैं, जो हवा उन्होंने लिया वो हवा मैं भी ले रहा हूँ, जो भूमि का अनाज उन्होंने खाया उसका अनाज मैं भी खा रहा हूँ। कितने भाग्यवान हैं हम। भारत में जन्म लेने के लिए कई जन्म पुण्य करना पड़ता है, तब जाकर भारत में मनुष्य का जन्म मिलता है, जन्म सार्थक करने का मौका मिलता है। सोचो आप इसके बारे में, ये जन्म मजा करने के लिए नहीं है। आपके कर्म के अनुसार मजा आएगा आपके जीवन में, लेकिन केवल मजा करने के लिए ये जीवन नहीं दिया गया है, ये जीवन भगवान को अर्पण करने के लिए दिया गया है, उसकी प्राप्ति के लिए दिया हुआ है। मतलब क्या, जो सबसे बड़ी मजा है भगवान के साथ में रहना, वो मजा के लिए जीवन दिया है, यहां वहां के फालतू मजा करने के लिए नहीं दिया है। लोग गुटखा खाते, तंबाकू खाते, सिगरेट पीते, दारू पीते, बोलते क्या हम लोग मजा कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको पता नहीं कितने रोग के शिकार बन जाएंगे वो लोग, जानते नहीं वो लोग। असली मजा तो भगवान के साथ में है, इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं उनके चेहरे पे रौनक होती है, तेज होता है। क्यों? क्योंकि वो सही प्रकार की मजा करते हैं भगवान के साथ रह के, भगवान का नाम लेके सही आनंद का अनुभव करते हैं। कोई नशा नहीं करते, कोई जुआ नहीं खेलते हैं, कोई बुरा खाना नहीं खाते हैं, जो प्रसाद खाते हैं उनका नाम लेते हैं और आनंद लेते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भगवान का भक्ति करके किसी को दुख नहीं होता, भगवान का भक्ति करके खुशियां बढ़ जाती है। तो क्या जरूरत है मुझे यहां पर आने की, बताओ आप मुझे। मैं अपने मुंबई में खुश हूं, भजन करता हूं, भगवान के नाम कर लेता हूं, इतना दूर रापर में आने की क्या जरूरत है। ये बताने के लिए आया हूं कि भगवान के भजन में खुशी है, आनंद है, गारंटी इस बात की। आप शराब पियेंगे तो आनंद की गारंटी नहीं उसके अंदर, कल उठकर उतरेगा शराब तो शराब दुखेगा आपका, मांसाहार करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, आज खुशी कल दुख। लेकिन भगवान का नाम लेंगे आज भी खुशी कल भी खुशी और अंत में मुक्ति भगवान के धाम में, कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो कौन मूर्ख व्यक्ति है उसको गवाएगा, सोचो आप। इसलिए जितना समय मिलेगा उतना नहीं तो समय निकाल कर भगवान का नाम लो। ये नाम इतना पावरफुल है कि हनुमान जी और बंदरों ने उसको पत्थर पे लिखा, अरे सब पत्थर तैर गए हो, तो प्रभु राम ने भी उसको हाथ में लिया तो बोला मैं क्यों मेरा नाम लिखूं, मैं खुद ही डाल रहा हूं ना, मतलब मेरा नाम लिख के ये लोग डाल रहे हैं तो तैर रहा है, और मैं खुद अगर लेके डालूंगा तो भी तैरना चाहिए, तो खुद लिया और डाला और डूब गया वो। तो प्रभु को बड़ा प्रश्न हो गया, तो उन्होंने भक्तों को पूछा ऐसा कैसे हो गया, तो बोलते हैं कि प्रभु जिसको आपने त्याग दिया उसको तो डूबना ही है जिसको आपने छोड़ दिया अपने हाथ से वो तो डूबने वाला है, लेकिन जिस पे अपना नाम लिखा हुआ है वो नहीं डूब सकता। इसका मतलब भगवान ने खुद साबित करके दिया है कि मुझसे भी अधिक पावरफुल मेरा नाम होता है। इसके कई प्रूफ दिए उन्होंने। मैं खुद आया था, भगवान ने कहा, मैं दुर्योधन के सामने खड़ा रह गया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, बोला ये तो बहुत जादूगर आदमी, इसको पकड़ो जेल में रखो। तो भगवान का दर्शन होने से भी कुछ लाभ होगा इसका गारंटी नहीं है। वो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सबके सामने भगवान आए थे ना, वो कंस के सामने भी भगवान आए थे, उसको क्या लगा शत्रु है मेरा, ये शत्रु है। रावण के सामने भी राम आए थे, लोगों ने बताया अरे रावण ये विष्णु है स्वयं, इसकी बीवी को वापस करो, शरण में आ जाओ इसके। बोला कोई बीवी भी कुछ नहीं, कोई राम कोई विष्णु विष्णु कुछ नहीं, यार शत्रु है, मैं उसको मारूंगा, वो तो वनवासी राम मनुष्य है, खा जाऊंगा उसको ब्रेकफास्ट में। क्या फायदा हुआ, स्वयं राम, स्वयं विष्णु राम के रूप में उनके सामने खड़े दर्शन दे रहे, इसके दर्शन मात्र से दिल पवित्र हो जाता है, उसको कुछ लाभ हुआ क्या उसका, बिल्कुल नहीं हुआ। तो भगवान का भी दर्शन होने से लाभ नहीं होगा आपको, लेकिन भगवान का नाम लेने से जरूर लाभ होगा, ये भगवान ने स्वयं बताया है, कई प्रकार के उदाहरण से बताया है। तो इसलिए हमारे सामने आज समझो भगवान खड़े हो गए, अरे पहले तो हम पहचानेंगे नहीं उनको कि कौन है, जिनके बारे में जानकारी नहीं, जिनके बारे में प्रेम नहीं, तो कैसे पहचानेंगे उसको। प्रधानमंत्री भी आके खड़े हो गए तो पहचानेंगे नहीं अगर जानते नहीं उसके बारे में तो। इसलिए नाम बहुत पावरफुल है, नाम को पकड़ो, जो नाम को पकड़ेगा उसके पीछे पीछे भगवान भागते आएंगे। इतनी शक्ति है नाम के अंदर। जो नाम पुकारेगा वो नाम की आवाज सुनकर वो स्वयं भगवान जिसका वो नाम है वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। उसका चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देगा और अंत में अपने घर में ले जाएगा आपको, जहां पर मृत्यु नहीं होगी, जहां पर बुढ़ापा नहीं होगा या बीमारी नहीं होगी, जहां पर कष्ट नहीं होगा, शराब नहीं होगी, यहां पर व्यभिचार नहीं होगा, ऐसा पवित्र जगह पर आपको ले जाएंगे। इसलिए अभी समय बाकी है, अभी घंटी बजी नहीं है, अभी टाइम है बजने के लिए। वो घंटी बजने तक आपको तैयारी करने के लिए टाइम है। ये मत सोचना कि मैं 25 साल की हूं, ये मत सोचना मैं 20 साल का हूं। अरे कब घंटी बजेगी किसको गारंटी है? अभी जपो, आज से जपो, कल के ऊपर मत डालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, वही व्यक्ति को बुद्धिमान कहा गया है। इसलिए बुद्धिमान बनो, और बुद्धिमान बनने के लिए जवान होने की जरूरत नहीं है, सुंदर होने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान बनने के लिए पैसे वाला बनने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं। बुद्धिमान तो वो व्यक्ति है जो समझता है कि जीवन की समस्या मृत्यु है, मृत्यु के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। वो व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान है, चाहे वो अंगूठा छाप क्यों ना हो। हमारे भारत में कितने संत लोग अंगूठा छापते मालूम है आपको? ना लिखाई ना पढ़ाई, कुछ भी नहीं, स्कूल में कभी गए नहीं, लेकिन सबको तार के भगवान के धाम में ले गए, स्कूल में नहीं गए। तो मैं आपको विनती करता हूं, हम रबी रापर में रेगुलरली आएंगे, यही बताने को आएंगे, याद दिलाने के लिए, भूलना मत। हाँ, मैं तो क्या होता है ना, शमशान में जाते हैं किसी को छोड़ने के लिए, बोलते हैं संसार कितना नश्वर है, इसमें कुछ नहीं है, आज है तो कल नहीं है। सबको ये सब नश्वर में क्यों दिल लगाते हैं हम लोग? ऐसा बड़े बड़े डायलॉग पिक्चर के मारते हैं, जैसे बाहर आते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, फिर पूरी दुनिया में लग जाते हैं, फिर कोई मर गया फिर वहां पहुंचते हैं, बोलते हैं हाँ यार ये भी तो चला गया, संसार कितना नश्वर है, इसमें कुछ राम नहीं है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब रिश्ते नाते सब झूठ है, सबको यहां से जाना है, क्यों पता नहीं दिल लगाते हैं हम यहां पर। ऐसे पूरी कविता वहां बोलते हैं, फिर आके स्नान करते हैं, फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं, फिर वापस भूल जाते हैं। ऐसे 50 बार लोग मरते हैं, 50 बार वहां पहुंचते हैं, 50 बार डायलॉग बोलते हैं उधर जाके, लेकिन सुधरते नहीं है। हमको परिवर्तन चाहिए, जब परिवर्तन होगा तो शमशान का विचार बनाए रखेगा मन में तो कुछ होगा, तो समझ में आया उसके, ये हम समझ सकते हैं कि उसको समझ में आया, वो विचार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, तो शमशान में मन में आता है, वो हमारे कल्याण का विचार है, वो उसी को हम भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज याद रखते हैं। तो आइए, हम सब आपको निमंत्रण देते हैं, भगवान के नाम के इस उत्सव में अपने आप को झोंक दो, कोई चिंता मत करो। जिसका नाम आप ले रहे हो वो बड़ा पावरफुल आदमी है, वो आपके जीवन की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। आप किसी ऐरे गरों का नाम नहीं ले रहे हो, आप उसका नाम ले रहे हो जो दुनिया का मालिक है, उसको पुकार रहे हो आप, उसको पुकार रहे हो तो आपको क्या भोजन नहीं देगा, वो कल्याण नहीं करेगा आपका? ऐसे व्यक्ति को पुकारो जो पावरफुल है, जो हर समस्या में आपको साथ दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को पुकारो, ऐरे गरे को मत पुकारो, वो देवता को पुकारो जो आपको मोक्ष दे सकता है। हजार देवताओं की पूजा मत करो, क्योंकि सब देवताओं के अंदर आपको मोक्ष देने की शक्ति नहीं है, एक ही है मुकुंद जो मोक्ष देने वाला है, उसको पुकारो, और उसको पुकारने के बाद में निश्चिंत हो जाओ, आपके हर घड़ी में हर समस्या में वो आपका साथ देगा और आपको तारेगा, सब मुश्किल से आपको तार देगा। जैसे एक माता अपने बालक को सब संकट से तार देती है, हर संकट में बालक मम्मी को एप्लीकेशन देता नहीं है, मम्मी मुझे बचाओ, अपने आप मम्मी उसको बचा देती है। बचाती क्यों नहीं थी, आप सब लोग माताएं बैठी यहां पर, तो बालक ने कहा था कि आपको मम्मी मेरी चड्डी छोटी हो गई, बड़ी चड्डी ला के खरीद दे दो, अभी जूता टाइट होने लगा है, नया जूता ला के दो। बोला है कभी, उसके पहले आप ला के देते उसको, वही तो माता है। तो माता का ही प्रतीक है, बड़ा प्रतीक भगवान, इसलिए निश्चिंत रहो, उनका आश्रय लेने के बाद में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपको तार देंगे, एक बार उनके जीवन में अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करके तो देखो, ट्राई करने में क्या खराबी है। माया को इतना समर्पण कर चुके हो, क्या मिला? धक्के ही तो खाए। एक बार कृष्ण को शरण जाके देखो क्या होता है। हमारा अनुभव यह है कि बहुत अच्छा होता है। जितना संकट आते हैं उतना वो तार देते हैं और उनका विश्वास बढ़ता है उनके ऊपर कि है वो हमारे जीवन में है और हमको छोड़ते नहीं है, वो हर जगह खड़े हैं साथ देने के लिए। तो क्या चिंता करना है उसमें। सबसे धनवान है, सबसे सुंदर है, सबसे विद्या वाले हैं, सबसे पावरफुल है। दुनिया में ऐसा कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है, उनको हम पुकार रहे हैं। इसलिए अरे दुनिया में कोई प्रधानमंत्री का कॉन्टैक्ट हो तो कितना गर्व करते हैं, मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, मेरा कॉन्टैक्ट है उनके साथ में। ये तो ब्रह्माओं के भी जन्मदाता है। अनंत ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मा है सबके बाप है वो, सबको जन्म देते, सबके पिता है वो, सबके ऊपर करुणा करते हैं और सब पर दया करते हैं, सबको बचाते हैं वो, उनका नाम सबको बचाता है। सोचो आप। इसलिए आपको विनती करते हैं, आपको आमंत्रण देते हैं, आइए भगवान के नाम के उत्सव में आइए, भगवान का नाम पुकारिए, हर रोज पुकारिए, चाहे सत्संग हो या नहीं हो, रोज घर में भगवान का नाम पुकारिए, रोज मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए उनका, सुंदर विग्रह का दर्शन कीजिए, उनको पूजन कीजिए, उनका नाम पुकारिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक लास्ट के रहस्य की बात बताता हूं। उनसे भी ज्यादा एक व्यक्ति दयालु है, वो है राधा रानी। राधा रानी बहुत दयालु है, उनसे भी अधिक दयालु है। और अगर उसके पास आप सिफारिश करते हो और वो आपका सिफारिश भगवान से करती है तो भगवान आपका नाम टाल नहीं सकते। आप उनको पुकारेंगे शायद नहीं सुनेंगे, ये बोलेंगी इनका नाम मैं बता रही हूं आपको, ये आपका भक्त है, तो वो आपको टाल नहीं सकते। जैसे बीवी ने सिफारिश की तो पति उनकी बात टाल नहीं सकता है। आपको काम करना है किसी का ना, बड़े अफसर से, तो उसके बीवी से कॉन्टेक्ट करो। बीवी के द्वारा जब वो सब्जी दे रही है, अचार दे रही है, तो वो बोलेगी सुनी अजी सुना तुमने, वो हमारा एक है उसका काम करना है आपको। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उसका? उसको ऑफिस में भेज दो 11 बजे, काम हो जाएगा। क्योंकि कौन से रास्ते से गया वो रास्ता जरूरी इंपॉर्टेंट है। उस तरह से राधा रानी जो है बड़ी भोली और बड़ी दयालु है। उनको पुकारेंगे आप तो उनके पीछे पीछे ये दौड़ के आते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तू सिमरण कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। इसलिए हम लोग तो क्या करते हैं, जब मिलते हैं किसी को तो क्या बोलते हैं, जय श्री राधे। क्यों जय श्री राधे बोलेंगे तो पता है हमारे पीछे कौन खड़े हैं, हम जानते हैं उस बात को। जिस पर हम प्रेम करते हैं उसका नाम कोई लेता है। समझो आपके घर में आपके बेटे का नाम दिया है, समझो अगर कोई रास्ते पे अभी समझो हम लोग यहां बैठे हैं और आप रास्ते में ओ दिया ऐसा कोई पुकार लगेगा तो पहले कौन देखेगा? उसकी मैया देखेगी कि मेरी बेटी को कौन पुकार रहा है, बेटी पर प्रेम है, बेटे का नाम कोई पुकार रहा है, तो पहले मैया देखेगी कौन पुकार रहा है मेरी बेटी को। उस तरह से आप राधे राधे बोलोगे तो कृष्ण देखेंगे कौन मेरे प्रियतमा को पुकार रहा है। तो उसका ध्यान अगर आकर्षित करना है तो उनकी प्रियतमा का नाम पुकारेंगे तो वो देखेंगे। उसकी एक छोटी सी कहानी है, वो बोल के मैं खत्म करता हूं। एक मोर था, मोर, उसको कृष्ण की कृपा चाहिए थी, इसलिए वो नंदगांव गया। नंदगांव यानी जहां पर नंद यशोदा रहते हैं और उनका घर है वहां पर बचपन का। वहां पर मोर गया और पुकारने लगा, गोपाल, हे गोविंद, हे केशव, हे गिरधारी, हे मुरारी, ऐसे अनेक नाम के पुकारने लगा। अरे कोई जवाब नहीं मिला उसको, परेशान हो गया वो, बहुत रोया वो। अरे मैं बड़ी आशा से आया था पुकारने के लिए, वो यही रहते हैं, वो जानता हूं मैं, पर्वत पर रहते हैं महल में, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो लोगों से पूछा क्या करूं, तो कोई ने बोला कि जाओ तुम बरसाने चले जाओ जहां राधा रानी रहती है, राधा रानी का घर है वहां पर, और वहां जाके उसको पुकारो। तो वहां गया बेचारा, वो बोल राधे राधे किशोरी, हे वृंदावनेश्वरी, तुरंत भाग के आई वो, तुरंत आके मोर को अपने गोद में लिया, मोर आंखों आंसू आंसू बहा रहा था, तो पूछती है अरे मयूर तू क्यों रो रहा है? तो क्या करूं, नंदगांव गया था, इतना बार पुकारा, वो आए नहीं। अच्छा अभी दोबारा जाओ। दोबारा क्यों जाऊं, पहले बार जाके फेल हो गया, अभी वापस फेल होना है क्या? नहीं 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 नहीं, अभी आपको मैं तरीका बताती हूँ कैसे उनको खींच के ले जाना है। अभी नंदगांव चले जाओ और गोपाल को मत पुकारो, बोलो राधे राधे, बोलो राधे। तो बोला ठीक है ट्राई करता हूँ। तो वो नंदगांव वापस चला गया और राधे करके पुकारा उसने, लेकिन रा भी पूरा नहीं हुआ, धा बाद में पूरा हुआ, उसके पहले ही आ गए भाग के भाग के। हाँ रा मतलब रा बोलने के, धे पूरा होने के पहले ही आ गए भाग के और तुरंत मोर को गोद में लिया और उसको हाथ से दुलारने लगे प्रेम से। तो वो मोर को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उसके पंख सब झड़ गए। होता है ना कभी कभी आनंद में रोमांच खड़े होते ना अपने, वो रोंगटे खड़े होते ना, वैसे उसके पंख सब झड़ गए। तो भगवान ने वो प्रेम की भावना में झड़े हुए पंख को उठाया और अपने सर पे धारण किया, बोला कि आज से मैं इसको मेरे मुकुट में धारण करूंगा। तो जो पहली बार कोशिश करके हार गया था एकदम आसानी से सफल हो गया। कैसे हो गया? राधा रानी का नाम पुकारा इसने। तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना हमारे पास। अगर वो 10 दिन भी पुकारते वहां बैठकर नंदगांव में तो शायद 10 दिन भी नहीं आते वो, लेकिन तुरंत बरसाने गया, लौट के आया तो आधे सेकंड में मिले वो। हमको भी जल्दी चाहिए ना, हमको टाइम की तरह इधर समय बीतते जा रहा है बहुत, पता नहीं मन कहाँ भटकेगा कल मालूम नहीं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उनको पुकारते हैं और इनका भी ध्यान खींच लेते हैं हमारी ओर। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पहले आता है हरे, हरे मतलब राधा रानी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। हरे राम 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 हरे हरे, कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया, है ना प्रभु? 4 बार हो गया ना। तो 16 अक्षरी मंत्र में 8 बार तो हरे 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 आता है और बाकी में राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण आता है, लेकिन एक नाम 8 बार रिपीट किया गया है। क्यों रिपीट किया गया है? इसके पीछे रहस्य है कि आप लोगों को उनकी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया है। देखो ऐसा क्या बोलते हैं कि हम लोग नारायण लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा ऐसे बोलते कभी? कैसे बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम, क्यों ऐसा बोलते हैं? अरे उनके जो उनकी देवी है उनको पहले पुकारेंगे तो भगवान भी देखेंगे आपकी ओर, इसलिए हर समय लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं। ये बहुत बुद्धिमानी की बात है, बहुत रहस्य की बात है, इसलिए आप सब लोग बोलो हरे कृष्णा। जब हरे को पुकारेंगे तो कृष्ण मुड़के देखेंगे कौन पुकार रहा है, सुनेंगे आपकी बात को। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हरे कृष्णा।